और गोरी तो श्री गुरु एन गुरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 76 साल और यदुवंशियों के बीच में युद्ध। तो हमने अभी तक सुना भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ में हैं और राजसु यज्ञ के अवसर पर शिशुपाल का वध हुआ। शिशुपाल के वध से शिशुपाल के पक्ष के जितने राजा थे वो सब भाग गए भयभीत होकर के, और जो पांडवों के पक्ष के राजा थे वो बड़े प्रसन्न हुए और बड़े निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की समाप्ति हुई। भगवान कृष्ण का पूजन हुआ और फिर ये वर्णन हुआ कि दुर्योधन का कैसे अपमान हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को भी रोक लिया था, भगवान कृष्ण को रोक लिया था, और भी कुछ अपने जो घनिष्ठ संबंधी थे उनको रोक लिया था। तो दुर्योधन का अपमान हुआ और वो अपमानित होकर के चला गया। अच्छा, अब शिशुपाल का जो वध हुआ था इसको लेकर के अब जो कृष्ण के शत्रु राजा थे वो अपनी योजनाएं बना रहे थे। तो उनमें से एक साल्व, साल्व भी एक आसुरी राजा है, जरासंध मारा गया तो जरासंध नहीं रहा, कंस के पक्ष ये सब लोग हैं, ये नरकासुर मारा गया है ना, तो अब ये तो नहीं रहे, जरासंध नहीं रहा। नहीं, एक है बहुत दुष्ट और वो कौन है, साल्व। तो अब सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में साल्व की कथा सुना रहे हैं, कृष्ण का शत्रु वो क्या करता है और शिव जी से वरदान प्राप्त करता है, एक फायदा क्या हुआ उससे। कृष्ण का जो विरोधी है उसकी जो है शंकर ब्रह्मा कोई भी क्यों ना सहायता करे, क्या फायदा उससे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, अब उन भगवान कृष्ण का एक अद्भुत कार्य सुनो, जो दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए अपने मानव शरीर में प्रकट हुए। अब सुनो कि उन्होंने किस तरह सौभपति का वध किया। सौभपति का मतलब साल्व, सौभ नाम का विमान था, शिव जी ने उसको जो विमान दिया था ये सौभ नाम का विमान था, मैदानों का बनाया हुआ, मैदानों का बनाया हुआ। वो महल भी था पांडवों का, लेकिन वो कृष्ण की सेवा में लगा है, इसलिए वो तो जो है ना नष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैदानों का बनाए हुए जो विमान है ये कृष्ण के विरुद्ध है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये नष्ट हुआ, सौभ नाम का विमान। और ऐसे ही मैदानों की बहुत काफी कारीगरी है इस विमान में, मैदानों ने बहुत विशेष ये विमान तैयार किया था, बड़ा प्रसिद्ध विमान है ये, जैसे विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक प्रसिद्ध विमान कौन सा है, पुष्पक विमान, उसी प्रकार से सौभ नाम का विमान ये मैदानों का बनाया हुआ है। पुष्पक विमान तो फिर भी रहा, वो नष्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि राम के विरुद्ध उसका उपयोग नहीं किया गया। पुष्पक विमान, पुष्पक विमान में ये कारण नहीं हो सकता था, राम के विरुद्ध कोई कारण नहीं कर सकता। पुष्पक विमान जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ है, देवताओं का शिल्पी, उसमें बैठ कर कोई व्यक्ति जो ना गलत काम नहीं कर सकता। पुष्पक विमान उस दृष्टि को धारण नहीं करेगा। पुष्पक विमान में जो है जब राम और लक्ष्मण को जो है इंद्रजीत ने अपने बाणों से छद विच्छद कर दिया और बिल्कुल मूर्छित हो गए, बिल्कुल खून खून हो गए उनके शरीर, और जो बाणरों की सेना है वो भी समझ रहे कि अब शायद प्राण छोड़ चुके हैं राम लक्ष्मण। तो रावण ने आदेश दिया था राक्षसियों को कि सीता को पुष्पक विमान में बैठा करके ऊपर ले जाओ और दिखा दो क्या कि राम लक्ष्मण मारे गए, उससे क्या होगा, रावण को क्या फायदा होगा। ये सीता समझ लेगी कि अब उसका कोई रक्षक नहीं है तो मेरी पत्नी बन जाएगी। तो सीता को जो है विश्वास हो जाएगा जब आंखों से देख लेगी कि राम मारे गए, लक्ष्मण मारे गए, तो फिर जो है वो मुझे अपना पति बना लेगी। क्योंकि इसके पहले रावण ने सीता को जो है धोखा देने के लिए राम का सिर ला करके रखा था माया से, तो फिर बाद में पता चला कि वो तो माया का सिर था, या सीता को जो है कुछ संदेशा भी भिजवाया था कि राम लक्ष्मण मारे गए और सब बानर भाग गए हैं, है ना। तो अब रावण कहता है कि सीता खुद अपनी आंखों से देख ले तो फिर जो है ना वो स्वयं ही निर्णय करेगी कि हाँ अब मैं रावण को स्वीकार करती हूँ अपने पति के रूप में। तो पुष्पक विमान पर बैठा करके सीता को राक्षसियां आकाश में ले गई और दिखाती हैं राम का जो है ना शरीर की सब बानर सेना घिरे हुए हैं। तो सीता जी फिर विचार करती हैं कि जो भविष्यवाणी हुई थी ब्राह्मणों की और जो हस्तरेखा जानने वाले हैं, मेरे शरीर के रक्षण जानने वाले जो सामुद्रिक हैं, उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सब निष्फल हो गई, झूठी हो गई। क्योंकि तो उनकी भविष्यवाणी है कि मैं कभी विधवा होने वाली नहीं हूं अपने जीवन में, अपने जीवन काल में मैं विधवा नहीं होने वाली हूं, तो सब भविष्यवाणी असत्य हो गई। तो फिर राक्षसियां कहती हैं सीता जी से कि नहीं नहीं वो भविष्यवाणी असत्य नहीं हुई, वो भविष्यवाणी सत्य है, राम मरे नहीं है। तो उसके कई कारण बताते हैं कि राम जिंदा है। एक कारण बताते हैं कि बानर लोग जो है ना अभी घेरे हुए हैं, क्यों, अगर जीवित नहीं होते तो बानरों की सेना राम को घेरे नहीं होती। अगर बानरों को जो है ना ये पता चल जाता कि ये शरीर छोड़ चुके हैं तो यहां रहते ही नहीं, सब भाग गए होते, पता नहीं चलता किसी का, एक बंदर का पता नहीं चलता। दूसरा काम यह है कि राम जिंदा है, इनके शरीर की कांति जो है ना अभी फीकी नहीं हुई है, शरीर में जो कांति है सुंदरता है, जैसे आत्मा निकल जाती शरीर से तो शरीर की सुंदरता बिल्कुल नहीं रहती, चाहे कितनी सुंदर स्त्री हो, कितना सुंदर पुरुष हो, आत्मा निकल जाए शरीर से तो जरा भी सुंदरता नहीं रहती है, कांति सब समाप्त हो जाती बिल्कुल, है ना। तो राम के चेहरे में जो कांति है, सौंदर्य है ना, तेज है, ये बिल्कुल ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसका मतलब है कि राम जिंदा है। और तीसरा कारण ये बताती हैं राक्षसियां कि ये पुष्पक विमान भी तुमको धारण नहीं करता अगर तुम विधवा हो गई होती तो। असंभव है, अगर राम मर चुके होते तो विधवा स्त्री को ये पुष्पक विमान धारण नहीं करता। इसका मतलब कि पुष्पक विमान में जो है कोई व्यक्ति अधर्म के कार्य नहीं कर सकता। इसलिए रावण ने सीता का हरण जो किया था तो पुष्पक विमान लेके नहीं आया था वो। पुष्पक विमान में बैठा करके सीता को, वो सीता का हरण नहीं कर सकता था, बलपूर्वक किसी स्त्री को, पराई स्त्री को जो है ना वो पकड़े और पुष्पकमान से लाए, तो पुष्पकमान ये काम नहीं कर सकता। इसलिए वो एक दूसरा ही रथ लाया था और उस रथ को फिर जो है जटायु नाम के गिद्ध ने तोड़ा था और गधे चला रहे थे उस रथ को, गधे उड़ते थे तो गधों को भी मार करके गिरा दिया था जटायु ने। लेकिन सौभ नाम का जो विमान है ये मैदानों का बनाया हुआ है, असुरों का जो कारीगर है ना, तो उसका जो ना उपयोग, उसकी जो शिल्प कला का उपयोग गलत कामों में हो सकती है। यदि सौभ नाम का जो विमान है सालव का, तो ये जो है गलत काम में इसका उपयोग हो रहा है। तो सौभपति बताया गया सालव को, अथान्य दति कृष्ण शृणु कर्माभुतम क्रीडा नरे शरीर से यथा सौभे पतिर्नहत। सालव शिशुपाल का मित्र था, जब वह रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित हुआ था तो यदु वीरों ने उसे जरासंध और अन्य राजाओं समेत युद्ध में परास्त कर दिया था। शिशुपाल सका सालवो रुक्मिण है आगत यदु फिर निर्जिता संखे जरासंधा दया। अब देखिए शिशुपाल परास्त हुआ था और साल जो है शिशुपाल के पक्ष का था, तो शिशुपाल भी परास्त हुआ, सब परास्त हुए, सब राजा परास्त हुए। तब से साल जो है कृष्ण का जानी दुश्मन बन गया, जानी दुश्मन बन गया, क्योंकि रुक्मिणी का विवाह हुआ कृष्ण से और शिशुपाल से नहीं हुआ, है ना। तब से जानी दुश्मन बन गया। अब पता है कितने साल पहले की घटना है ये, रुक्मिणी का विवाह हुआ कृष्ण से है? और अभी तो प्रद्युम्न जी बड़े हो चुके हैं, प्रद्युम्न जी साहस युद्ध कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ना ना आएगा, तो प्रद्युम्न जी तो काफी बड़े हो चुके हैं और प्रद्युम्न जी साहस युद्ध कर रहे हैं तो विवाहित भी है, वो विवाह उनका हो चुका है ना, रत्नी के साथ विवाह पहले हो चुका, तभी वो द्वारका में फिर वापस आएंगे, है ना। तो इसका मतलब कई साल पहले की घटना है, जो कि साल जो है कृष्ण का दुश्मन बना हुआ है। तो ये साल जो है सबसे कृष्ण का जो है दुश्मन, घोर शत्रु बन गया है। तो आगे क्या हुआ, उस समय जब कृष्ण रुक्मिणी को ले गए और सब निराश हो गए सब राजा लोग, तो साल्व ने समस्त राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा, जरा मेरे पराक्रम को देखो। अक्सर लोग जो है मूर्खता से अपनी प्रतिज्ञाएं करते हैं। साल्वा प्रतिज्ञा करो शृण्वताम सर्वे भूभुजाम अयादवाम क्षमाम करिष्ये पौरुषम ममे पश्यते। जैसे भगवान राम ने प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी, दंडकारण्य में ये जो ऋषि थे उनके सामने प्रतिज्ञा की थी, जब ऋषि मुनियों से मिले और एक स्थान पर देखा हड्डियों का ढेर पड़ा है, बहुत बड़ा पहाड़, हड्डियों का पहाड़ पड़ा। जब भगवान राम ने पूछा कि ये किसकी हड्डियां हैं, तो ऋषि मुनियों ने बताया कि यहाँ के जो राक्षस हैं, यहाँ जो राक्षस रहते हैं, उन्होंने ऋषि मुनियों को खाया है, उनकी हड्डियों का ढेर है। तो भगवान राम ने प्रतिज्ञा की क्या, कि दंडक वन में जो ना एक भी राक्षस नहीं रहेगा, सबको जो ना समाप्त करने वाला। और ये बड़े खतरनाक राक्षस थे, मतलब गिने चुने राक्षस थे जो रावण ने भेजे थे दंडक वन में। 14,000 अक्षर। तो भगवान राम ने जो प्रतिज्ञा की वो पूरी की, अकेले जो ना 14,000 अक्षरों का वध कर दिया, एक भी नहीं बचा। राम ने प्रतिज्ञा की थी। वैसे तुलसी की तरह मैंने लिखा है, तुलसी के रामायण में लिखा है, निश्चर हीन करहु मही भुज उठाए प्रण चीन, कि पूरी पृथ्वी को राक्षस से विहीन कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रामचरित मानस में जैसे लिखा है कि पूरी पृथ्वी में एक भी राक्षस नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। न राम ने ऐसी प्रतिज्ञा की और ना ऐसा किया उन्होंने। लंका में तो राक्षस रहे और विभीषण को राजा बनाया राक्षसों का, और आदेश भी दिया कि कैसे राज्य शासन करना है। लेकिन जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वो थी दंडक वन में, जहां ऋषि मुनि लोग तपस्या कर रहे हैं, यहां एक भी राक्षस नहीं रहेगा। तो वहां के 14,000 राक्षसों का उन्होंने तुरंत ही सफाया किया। एक कारण बनाया, वो क्या था? शूर्पणखा का। और ऐसी स्थिति पैदा की कि सीता जी को खाने के लिए तैयार हुई और उसके नाक कान काटे, और जैसे ही वो जो है ना गई, उन राक्षसों को भड़काया और वो आए लड़ाई करने के लिए और खत्म किया। तो राम ने जो प्रतिज्ञा की तुरंत पूरी कर दी, कोई देर नहीं की। नहीं, असुर लोग जो ना प्रतिज्ञा करते हैं बड़ी जल्दी, लेकिन फिर बाद में समस्या आती है, कैसे करें पूरी। तो कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति जो है ना पहले बोल लेता है बाद में सोचता है। जो मूर्ख है वो पहले बोलता है बाद में सोचता है, और जो बुद्धिमान है पहले सोचता है बाद में बोलता है। भगवान राम ने पहले सोच लिया कि मुझे ये करना है, तब फिर बोले। उन्होंने विचार कर लिया अपने पराक्रम का, कि उनका पराक्रम है, कर सकते हैं, और क्या क्या उसमें कठिनाइयां होंगी, कितना बड़ा कार्य है, कितना समय लगेगा, सब विचार करके तब बोला कि मैं ये काम करूंगा, है ना। और जो मूर्ख होता है तो विचार नहीं करता है कि उसकी कितनी योग्यता है और काम कितना बड़ा है और कितनी कठिनाई आएंगी, वो बोल देता है। तो इसको जो है ना क्या कहते हैं, तमोगुणी व्यक्ति है। अनुबंधम क्षेम हिंसा मनवेक्षिता पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म ये सत्ता में समुचित। मोह पूर्वक मूर्खता से किसी भी काम को शुरू कर देता है। कहने का मतलब है कि उसने प्रतिज्ञा कर ली, इसका मतलब क्या है, काम शुरू कर दिया मूर्खता से। अनुबंधम परिणाम भी नहीं देख रहा कि परिणाम क्या होगा। क्षयम और अपना कितना नुकसान होगा इस काम को करने से, वो नहीं सोचता। हिंसा दूसरों को कितना नुकसान होगा, वो भी नहीं सोचता। अनवेक्षित पौरुषम अपनी योग्यता भी नहीं देखता कि अपने अंदर कितना पराक्रम है, अपनी कितनी योग्यता है, मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मोहात आरभ्य थे मूर्खता से कह देता है कि हाँ मैं ये काम करूंगा वो काम करूंगा। तो इस साल जो मूर्ख है, इसलिए क्या कह दिया उसने कि पूरी पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा। जैसे भगवान है, भगवान पृथ्वी में से पृथ्वी का भार उतारने के लिए आते हैं। भगवान आते हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो वो पृथ्वी वो जो है ना साल प्रतिज्ञा कर रहा है कि पृथ्वी से यादवों को समाप्त कर दूंगा। तो ये मूर्ख है ना। सालवा प्रतिज्ञा करो क्षमताम सर्वे भूभुजाम अयादवाम क्षमाम करिष्ये पौरुषम मम पश्यते। क्या कहता है, पौरुषम मम पश्यते, मेरे पुरुषार्थ को देखो, मेरे पराक्रम को देखो। दिखाता है पराक्रम। भगवान में ये चीज नहीं होती है। भगवान जितना कहते हैं उससे बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। और ये असुर लोग जो है कहते बहुत ज्यादा हैं और करते थोड़ा है, उतना करते नहीं। इसे कहा जाता है गरजते हुए बादल बरसते नहीं है, है ना। या बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है तो ये भौंकने वाला कुत्ता है साल इतना तो कह नहीं सकता है, लेकिन दिखाता है, कहता है मेरे पराक्रम को देखो, मूर्ख है। उसी प्रकार से रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की थी। रुक्मिणी का जो बड़ा भाई रुक्मिणी था वो भी मूर्ख था। उसने क्या प्रतिज्ञा की थी? कृष्ण को जो है ना जीत करके और अपनी बहन रुक्मिणी को जब तक वापस नहीं लाऊं तब तक मैं कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखलाऊं, है ना? मूर्ख तो फिर आखिर क्या हुआ, कुंडिनपुर वापस नहीं आ पाया, है ना? तो उसको भोजकट नाम का नगर अलग से बसाना पड़ा, है ना? जीवन भर के लिए क्या हुआ, मुंह काला हो गया, कलंकित हो गया जीवन भर के लिए। उसको भी जो ना जीवन भर के लिए लज्जित होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी रुक्मिणी को कृष्ण से छीन करके वापस लाऊंगा और मैं नहीं ला पाया, है ना? जीवन भर के लिए अपने पिता का और अपने भाइयों का दर्शन नहीं कर पाए जीवन भर के लिए, है ना? हाँ, परशुराम जी की जो प्रतिज्ञा है, हाँ उन्होंने कहा क्षत्रियों का विनाश करूंगा, तो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मतलब यही है कि ये सब कार्य जो है ना भगवान की कृपा से होते हैं, है ना? और भगवान के जो भक्त होते हैं उनके जो संकल्प हैं वो भगवान पूरे करते हैं। भगवान ने कहा भी है कि अपने वचन को चाहे मैं झूठा कर दूं लेकिन अपने भक्ति के वचन को पूरा करता हूं। शायद आज की ही तारीख में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो उनके पत्र है ना प्रभुपाद जी के, तो आज की तारीख में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण का जो दास होता है उसकी सेवा करना कृष्ण की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कृष्ण का दास होता है, अगर उसने कह दिया कि मैं तुमको कृष्ण के लोक में ले जाऊंगा तो फिर तुम जरूर जाओगे, अगर उसने कह दिया तो फिर कृष्ण को चिंता हो जाती कि भाई मेरे सेवक ने कह दिया है? अब आप उनके धाम में जाने लायक नहीं हो, कोई 1% भी योग्यता नहीं आपकी भगवान के धाम में जाने की। लेकिन कृष्ण के दास ने अगर कह दिया तो फिर कृष्ण को चिंता हो जाती है कि भाई उसने कह दिया तो अब मैं क्या करूं तो सब नियम कृष्ण के टूट जाते हैं। कृष्ण का सेवक अगर बोल दे रहा है कुछ तो कृष्ण के सेवक को प्रसन्न करना कृष्ण को प्रसन्न करने से ज्यादा ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होने वाले नहीं, क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है कृष्ण को प्रसन्न करने की, है ना? तो कृष्ण के सेवक को प्रसन्न करने में ये लाभ है। तो ये साल जो है ना कृष्ण के विरोधी लोग हैं ये जो ना प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इनकी प्रतिज्ञा का क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है, मूर्ख है। वो कहता है मैं पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा। ये यादव जानते कौन है? ये देवता हैं कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए, और कृष्ण आए हैं पृथ्वी में ऐसे असुरों का नाश करने के लिए। विनाश आए थे तो कृताम, तो नष्ट तो इसको होना है, पृथ्वी से इन असुरों का भार उतरना है। और ये असुर जो ना क्या कह रहे हैं कि यादवों का भार मैं उतारूंगा, है ना? तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि वो मूर्ख जो है ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकने के बाद क्या करता है, शिव जी की पूजा करता है, पशुपति की पूजा करता है। शंकर जी पशुपति कहे जाते हैं, तो पशुपति शंकर जी को पशुपति क्यों कहा जाता है? पशुओं के पति, पशु तमोगुणी लोग हैं, है ना? जो पशुओं के समान जो लोग होते हैं तमोगुणी होते हैं तो उनके पति हैं शंकर जी, है ना? तो पशुओं के समान जिनकी चेतना है तमोगुणी है, तो ऐसे लोग है ना शिव जी की पूजा करते हैं। तो शंकर जी को पशुपति कहा जाता है, तो पशुपति शिव जी की पूजा प्रतिदिन करने लगा। कैसे? एक मुट्ठी धूल पानसुम, जो भी हो भस्म हो या धूल हो, एक मुट्ठी धूल खा करके शंकर जी की पूजा करने लगा। इति मूढ़ा प्रतिज्ञाएं देवं पशुपतिं प्रभुं आराधया आराधया मास नृपः पांसु मुष्टिं सकृन् ग्रसन्। तो ये हाल है। शंकर जी के भक्त शंकर जी को खुश करने के लिए क्या करते हैं, कैसी तपस्या करते हैं, एक मुट्ठी धूल खा करके शंकर जी तपस्या करते हैं। कितना कष्ट है, जरा सी एक कण भी जो ना धूल का अगर मुंह में चला जाए तो कितना बुरा लगता है, और वो कुछ नहीं खा रहा है, एक मुट्ठी धूल खा रहा है, कितनी तकलीफ की बात है ना। इसी प्रकार से जो वृकासुर था वो तपस्या कर रहा था शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए, तो 7 दिन तक क्या करता रहा, लगातार अपने शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में जलाता रहा। कितना कष्ट है। तो ये तमोगुणी लोग हैं। तो शिवजी उमापति शिवजी शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, आशुतोष कहलाते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी शरण में आए साल्व को 1 वर्ष के बाद ही ये कहकर तुष्ट किया कि तुम वर चाहो, तुम जो वर चाहो मांगो। 1 साल तक फिर भी शिवजी ने उसको दर्शन नहीं दिया, क्योंकि तो शिवजी जानते हैं कि दुष्ट लोग जो है ना उल्टा सीधा वरदान मांगेंगे और फिर मुझे भी संकट में डालेंगे। इसलिए 1 साल तक उसको जो है कितना कष्ट सहना पड़ा, कृष्ण के विरुद्ध है, कृष्ण के विरोधी लोग हैं ये, शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। संवत्सरांते भगवान आशुतोष उमापति वरेण छंद यामास साल्वम शरण आगतम। आशुतोष, हालांकि आशुतोष हैं संगत जी, आशु का मतलब जल्दी, तो उस माने तुष्ट होने वाले, तो अभी 1 साल लगाया शंकर जी ने। तो तात्पर्य में क्या लिखा है, साल्व ने आशुतोष नाम से विख्यात शिव जी की पूजा की, फिर भी शिव जी पूरे 1 वर्ष तक उसके पास नहीं आए, क्योंकि सर्वज्ञ हैं शिव जी, भगवान कहा जाता शिव जी को, तो उसमें संपूर्ण ज्ञान, तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए मैं जानूंगा कि भगवान कृष्ण के शत्रु को दिया हुआ कोई भी वरदान निष्फल होगा। इसलिए 1 साल तक सोचते रहे क्या करूं क्या करूं है? तो भी जैसा कि शरणम आगतम शब्दों से विदित होता है कि साल शिव जी के शरण में आया था, और प्रामाणिक नियम को बनाए रखने के लिए कि पूजा करने वाले को वरदान मिलना ही चाहिए, इस दृष्टि से शिव जी ने साल्व को एक वरदान दिया। बड़ा अच्छा तात्पर्य है। संवत्सरांते साल्वम शरणम आगतम, शरण में आया है साल्व, 1 साल फिर भी लगा दिया शिव जी ने, शरण में आया है तो भाई उसको वरदान देना पड़ेगा, लेकिन 1 साल लगाया। अब साल में क्या मांगा, सीधे तो नहीं कह सकता था कि भाई मुझे कृष्ण को मारना है, कृष्ण के विरुद्ध काम करना है, सीधे नहीं कह सकता था, नहीं तो शंकर जी सीधे कह देते भाई मेरे से नहीं होगा, है ना। तो साल में क्या मांगा, मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए जो ना तो देवता नष्ट करें, ना तो देवताओं की शक्ति से नष्ट हो सके, ना मनुष्यों की शक्ति से नष्ट हो सके, ना गंधर्वों की शक्ति से, ना उर्गों, उर्ग मतलब सर्प, और ना ही राक्षस लोग नष्ट कर पाए, ऐसा ज्ञान चाहिए मुझे, और मेरी इच्छानुसार कहीं भी जा सके, मेरी इच्छानुसार कहीं भी जा सके। तो मेरी इच्छानुसार, अब ये नहीं कहा कि मुझे द्वारका में आक्रमण करना है, मुख्य तो उसका प्रयोजन था कि द्वारका में आक्रमण करना है, है ना, और द्वारका में जो है और कोई उपाय नहीं है जाने का, ना रथों की सेना जा सकती है, ना हाथियों की सेना जा सकती है, ना पैदल सेना जा सकती है, ना घोड़ों की सेना जा सकती है, समुद्र के बीच में है ना। लेकिन उसने ये सब नहीं बताया, उसने ये कहा कि मुझे ऐसा विमान चाहिए जो मेरी इच्छा के अनुसार जहां चाहूं वहां मुझे ले जाए। मनुष्याणाम गंधो गंधर्वो रग रक्षसाम अभेद्यम कामकम बम्रे सयानम वृष्णि भीषणम। हाँ, तो शिव जी ने कहा ऐसा ही हो, तो उनके आदेश पर अपने शत्रुओं के नगर को जीत लेने वाले मैं दानवों ने एक लोहे की उड़न नगरी बनाई जिसका नाम सौभ था, और लाकर साल्व को भेंट कर दिया। तथेति गिरिशां दिष्टो मया परे पुरंजया पुरम निर्माय साल्वाय प्रादात्वभयमयस्मयम्। अब ये यान कैसा था? पहुंच से परे अंधकार से पूर्ण था, अंधकार से पूर्ण तो इसमें प्रकाश नहीं था, अंधेरा था। अंधेरे से क्या है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई कौन शत्रु है, कहां पर है, कुछ पता नहीं चले, है ना। जैसे कि आजकल गाड़ियों में भी शीशा लगाते हैं, ऐसा शीशा लगाते हैं कि बाहर से काला दिखाई पड़ेगा, अंदर से अंदर का नहीं दिखाई पड़ेगा। अंदर का व्यक्ति वो बाहर देख पाएगा, है ना, लेकिन बाहर का व्यक्ति जो है ना अंदर शीशे के अंदर नहीं देख पाएगा। आजकल ऐसा शीशा बनाने लगाते हैं। तो उसी प्रकार के स्वास्थ्य निर्माण था, है ना, कितना काला था, अंधकार से पूर्ण था, कि कोई व्यक्ति पता नहीं लगा पाएगा। फिर शत्रु सुरक्षित रहेंगे, उसके अंदर जो योद्धा लोग हैं सुरक्षित रहेंगे, और कहीं भी जा सकता था। इसे प्राप्त करने पर साल अपने प्रति वृष्णियों की शत्रुता स्मरण करते हुए द्वारका गया। सलंध्वा कामगम यानम तमोधा में दुरासदम यो द्वारे वतीम साल्वो वैरम वृष्णि कृतम स्मरन। तो ये साल्व ने जो है ना तपस्या की थी एक साल तक। तो ये समझो कि जब शिशुपाल का विवाह होना था उस समय उसने प्रतिज्ञा की थी और विमान प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब साल्व उस विमान का उपयोग कब कर रहा है? जब शिशुपाल की मृत्यु हो गई। ये साल्व उस समय भी रहा होगा शिशुपाल के पक्ष में, और जब शिशुपाल की मृत्यु हो गई तो भाग करके अपना चला गया। अब कृष्ण तो वहां रुके हुए हैं इंद्रप्रस्थ में, और यहां साल्व को मौका मिल गया। अच्छा मौका है, क्योंकि कृष्ण जो है ना अब द्वारका में नहीं है। तो महाभारत में लिखा हुआ है कि शिशुपाल ने भी ऐसा कई बार काम किया है। जब कृष्ण द्वारका में नहीं होते थे तो द्वारका में इसने आक्रमण किए कई बार। अब कैसे आक्रमण किए ये बताया नहीं गया कि कैसे आक्रमण किए, इसके पास क्या उपाय था वहां जाने का। लेकिन कई बार इसने भी द्वारका को उजाड़ा शिशुपाल ने। तो अब शिशुपाल का ही जो काम है अब ये साल्व करने लगा। तो कृष्ण इंद्रप्रस्थ में है, उसी समय साल्व ने द्वारका में आक्रमण किया, और इसने विमान के लिए ऐसा वरदान मांगा था सब जी से कि वृष्णि भीषणम। वृष्णि भीषणम का मतलब वृष्णि वंशियों को भयभीत करने वाला, इतना तो बोल दिया। शंकर जी ने कहा चलो इतना तो चलो चलता है। कृष्ण भीषणम नहीं कि कृष्ण को भी जो ना ये भयानक, कृष्ण के लिए भयानक हो, ऐसा नहीं मांगा उसने। श्री जी कहते थे भैया माफ करो, मैंने दे सकता ऐसा वरदान। इसलिए वृष्णि भीषणम उसने कहा चलो ठीक है। तो अब साल्व को मौका मिल गया कि वृष्णियों को जो ना संकट में डालूं, क्योंकि कृष्ण अब जो है द्वारका से बाहर है, तो मौका मिल गया। तो यहां से शिशुपाल की हत्या हुई, वहां तुरंत अपना भागा अपने नगर में, और वहां विमान ला करके अच्छा मौका है, वहां कृष्ण जो है ना अपने लगे हुए हैं यज्ञ में, और यज्ञ के बाद भी जो है युधिष्ठिर महाराज ने रोका हुआ है प्रेम से, तो कृष्ण युधिष्ठिर के प्रेम में बंधे हैं। अच्छा मौका है, वृष्णि वंशियों को अब संकट में डालो। सलंध्वा कामगम यानम तमोधा में दुरासदम यो द्वारे वतीं साल्वो वैरम वृष्णि कृतं स्मरन। वैरम वृष्णि कृतम स्मरण, वृष्णि वंशियों की शत्रुता का स्मरण करते हुए वो द्वारका में गया। तो वृष्णि वंशियों की शत्रुता, क्योंकि कृष्ण ने तो उस समय युद्ध नहीं किया था, कृष्ण तो रुक्मिणी को लेकर के भागे है? और जो वृष्णि वंशी उन्होंने ही जो है ना मतलब सेना को रौंदा कुचला, इसलिए वृष्णिवंशियों से बहुत ज्यादा गुस्से में था। बल्कि यही कहा था उसने कि पूरी पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा। तो कृष्ण भी यादव है, तो कृष्ण भी उसमें आ गए, सबको नष्ट करूंगा। तो अब क्या करता है, विशाल सेना के द्वारा उसने नगर को घेर लिया और जितनी वाटिकाएं हैं, उद्यान हैं, अट्टालिकाएं हैं, महल, गोपुर, चार दीवारियां हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल हैं, उनको ध्वस्त किया। अपने श्रेष्ठ यान से पत्थरों, वृक्ष के तनों, वज्रों, सर्पों, ओलों और हथियारों की वर्षा की। एक भीषण बवंडर उसने पैदा कर दिया, धूल से सब दिशाओं को ओझल कर दिया। निरुद्ध से नया साल गुम महत्या भरतर शब प्रेम भंजो पवना उद्यानानी च सर्वशः सगो पुराणी द्वाराणी प्रासादा टाल तोलिका विहारां साविमाग्रां विमानाग्र्यां निपेतो सत्र वृष्टयः शिलाद्रुमाश्चासनयः सर्वा आसार सरकरा प्रचंडश्चक्रवातोभूं रजसाच्छादिता दिशः। अब क्या हुआ, बहुत बेचैन हो गई द्वारकापुरी। देखो ये अधर्म युद्ध है, ये जैसे आजकल करते हैं ना लोग है? कि दिल्ली शहर में बम गिरा दिया, एटम बम गिरा दिया, है ना। ये दुष्ट लोग हैं, आतंकवादी है? द्वारका में जो प्रजा है उसको उसके उत्पात कर रहे हैं, टेररिस्ट है आजकल ही है। एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, ऐसे कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखो जो वाटिका है, उद्यान है, महल, गोपुर है, सब नष्ट कर रहे हैं। कैसे, पत्थरों की वर्षा कर रहे हैं, वृक्ष के तनों की वर्षा कर रहे हैं, बवंडर उड़ा रहे हैं इस तरह से। और क्या हुआ, स्टॉप विमान द्वारा बुरी तरह सताए जाने से कृष्ण की पुरी में चैन नहीं रहा। जिस तरह असुरों की तीन नगरियों द्वारा आक्रमण किए जाने पर पृथ्वी अशांत हो गई थी, त्रिपुरासुर है ना, तो भी मैदानों ने बनाए थे तीन पुर असुरों की, उसी प्रकार से इसने जो है द्वारका में आतंक फैला दिया। यत्यर्जे मानो सौभेन कृष्ण से नगरी वृषम ना विपद्यते सम्राजम त्रिपुरेण यथा महीम। तो समय जो है प्रद्युम्न जी थे द्वारका की रक्षा में, अपनी प्रजा को इस प्रकार सताए जाते हुए देखकर यशस्वी और वीर प्रद्युम्न जी ने सबसे इस प्रकार कहा, डरो नहीं, अपने रथ पर वो सवार हुए। प्रद्युम्नो भगवान वीक्ष बाध्यमाना निजा प्रजा मा भैष्टित्य विधान वीरो रथारूढ़ो महायश। अब प्रद्युम्न के साथ में कौन है, सातकी हैं सेनापति, चारों देश में सांभव, अक्रूर और उनके छोटे भाई, उनके साथ हार्दिक के, भानुविंद, गद, शुक और सारण, अनेक प्रकार के अनेक अन्य प्रमुख धनुर्धरों के साथ कवच धारण करके रथों, हाथियों, घोड़ों पर सवार सैनिकों और पैदल सिपाहियों के से सुरक्षित होकर नगर से बाहर आए। सात के चारों देश नाम्बो क्रूरा सानुज हार्दिक्यो भानुविंदश्च गदश्च सुखसारण अपरे च महेश्वासं रथयोतपयोतपां निर्ययुर्दंसितां गुप्ता रथे भास्व पदातिभिः। तब क्या हुआ, साल्व की सेना और यदुवंशियों की सेना के बीच कैसा युद्ध हुआ, रोम रोंगटे खड़ा कर देने वाला युद्ध हुआ, बड़ा भीषण, जिसमें कि भयानक युद्ध, जैसे रोमांच हो जाए, असुरों देवताओं का युद्ध जैसा, देवासुर संग्राम जैसा युद्ध हुआ। ये असुर कौन है, ये सौभ नामक विमान पर जो बैठे हुए हैं ये सब असुर हैं, और यदुवंशी जो है देवता जैसे हैं। तथा प्रभ वृत युद्धम साल्वानाम यदुभीषण यथा सुराणाम विबुधै तुमलम लोमे हर्षणम। प्रद्युम्न ने अपने दिव्य अस्त्रों से साल्व की पूरी माया को क्षण भर में नष्ट कर दिया, जिस प्रकार सूर्य की किरणें रात्रि के अंधकार को दूर कर देती हैं। तास्य सौभे पतेर मायां दिव्यास्त्रे रुक्मणि सुतां छलेन नाशयामासे नेशं तम इवोष्णुगुः। साल्व बहुत मायावी था, आगे चल करके कितना माया करता है वो कि कृष्ण के पिता वसुदेव जी का भी कटा हुआ सिर ला करके दिखाता है ना, इतना दुष्ट था, माया भी था। लेकिन प्रद्युम्न जी के सामने उसकी माया नहीं चली, उसकी माया सब दूर कर दी। प्रद्युम्न के सारे तीरों के पछल्ले सोने के थे और सिरे लोहे के और जोड़ एकदम चिकने थे। उन्होंने 25 बाणों से साल्व के प्रधान सेनापति विमान को घायल कर दिया और 100 बाणों से साल्व पर प्रहार किया। फिर उन्होंने बाण साल्व के हर सिपाही को एक एक बाण से, सारथियों में से प्रत्येक को 10-10 बाणों से, उनके घोड़ों और वाहनों को 3-3 बाणों से बेध डाला। देखो प्रद्युम्न जी कितनी मतलब इनमें कितना जो है निपुणता है, इतना तेज विमान है उसका, इन तो भी मारते हैं। विद्यादय पंचविंशत्याम स्वर्ण पुंख रयो मुख साल्वस्य ध्वजनी पालम सरे सन्नत पर्वभी सतेन ताडयच्छाल्वम एकैके नास्य सैनिकम् दशभिर् नेत्रिम वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः। तब उन्होंने यशस्वी प्रद्युम्न को ऐसा भय चकित करने वाला और बलशाली कर्तव्य करते देखा तो दोनों पक्षों के सैनिकों ने उनकी प्रशंसा की। तदद्भुतम महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासुः सर्वे स्वपरे सैनिका। देखिए साल्व का जो विमान था उसमें वरदान था कि कोई व्यक्ति देख भी नहीं पाएगा और वो मन की गति से चलेगा, इतनी तेज चल रहा है। और प्रद्युम्न जी के पास कितना समझो कि फुर्ती है बाण चलाने की, है ना, निशाना कैसा अचूक निशाना, इस तरह से चकित कर दिया सबको। वो विमान कैसा था साल्व का, मैदानों के द्वारा निर्मित वो मायावी विमान था। कैसा है, एक क्षण में अनेक दिखाई पड़ता है, बहुत से विमान, और फिर कभी एक दिखाई पड़ता है, कभी बहुत से दिखाई पड़ रहा है, और कभी दिखाई देता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो कभी दिखाई नहीं देता है। इस तरह साल्व के विरोधी ये निश्चित नहीं कर पाते थे कि वो कहां पर है। यदुवंशी लोग तो खड़े खड़े देख रहे हैं, क्या करें, कोई कुछ कर नहीं सकता। वो आतंकवादी इतना बदमाश है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रद्युम्न जी ने फिर भी जो ना हालत खराब कर दी उसकी। बहुरूपे के रूपम तम दृश्यते न च दृश्यते मायामयम मयकृतम दुर्विभाव्यम परे रभून। देखो विमान कैसा अद्भुत विमान, कभी जमीन में दिखाई पड़ रहा है, कभी आकाश में दिखाई पड़ रहा है, कभी पर्वत की चोटी में, कभी पानी में, वहां पर पर्वत भी है द्वारका में, तो पर्वत की चोटी में दिखाई पड़ रहा है, और कभी पानी समुद्र है वहां दिखाई पड़ रहा है, कभी जमीन में और कभी आकाश में। घूमते हुए आग के पुंज की तरह वो एक स्थान पर टिकता नहीं है। जैसे अलाद चक्र होता ना, अग्नि का एक गोला होता है ना, तो वो लाठी के एक सिरे में आग होती है, इतनी तेजी से घुमाई जाती है लाठी कि वो आग का जैसे चक्कर दिखाई पड़ता है। ऐसे उसका चक्कर तो पूरी द्वारका में लग रहा था, समुद्र में, कभी आकाश में, कभी जमीन में, कभी पर्वत के ऊपर, इतना बड़ा उसने एक गोला बना दिया। ऐसा दिखाई पड़ रहा है। क्वचिन भूमो क्वचिन व्योमनि गिरिमूर्ध्नि जले क्वचिन अलात चक्रवन भ्राम्यन सौभम तंदुरवस्थितम। तो बहुत ही बड़े वीर हैं यदुवंशी, साल जहां जहां अपने सौभ विमान को और अपने सेना के साथ प्रकट होता वहां वहां यदु सेनापति अपने बाण चलाते थे, देर नहीं करते, बड़े निर्भीक हैं, जहां दिखाई पड़े तुरंत बाण मारते थे। यत्र यत्रोप लक्षेत ससोवासा सैनिकां सालवस्तत सतो मुंचन छरान सांस्वत यूथपान। अब क्या हुआ, शत्रु के बाणों से पीड़ित हो रही अपनी सेना को देख करके साल्व बड़ा परेशान हो गया। हालांकि उसके पास इतना साधन है, विमान जहां जाए वहां जाए इधर उधर, तो भी यादवों ने हालत खराब कर दी उसकी। क्योंकि यदुवंशी जो शत्रु हैं उनके बाण अग्नि और सूर्य की तरह प्रहार कर रहे थे और सांप की विष की तरह असह्य हो रहे थे, बहुत मुश्किल हो गया। सरे रग्नर के संपर्श आसी विषय दुरासद पीड्यमाने पुरानी का साल्वो मोहन परेरते। तात्पर्य में लिखा है, सीधा सीधा स्वामी बतलाते हैं कि यदुवंशियों के बाण अग्नि की तरह जल रहे थे, चारों ओर से सूर्य की किरणों के समान प्रहार कर रहे थे और सर्प विष की तरह एक ही बार स्पर्श करने पर प्राण घातक थे। तीन विशेषताएं हैं, एक तो है अग्नि की विशेषता, अग्नि की तरह जलन पैदा करते हैं और सूर्य की किरणों की तरह चारों तरफ से आते बाण, है ना, और सर्प विष की तरह एक बार स्पर्श किया तो मरे आदमी, इतना घातक थे बाण। फिर चूंकि यदुवंशी जो वीर थे वो कैसे थे, या तो मरेंगे या मारेंगे, यदुवंशियों में ये नहीं था कि भाई अपनी जान बचाना है, वे बिल्कुल मतलब डट करके खड़े थे, है? इस जगत में अगले जगत में विजय प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं ना, हतो वहां प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोगते नहीं, जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे और मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, है ना। तो यादव वीर हैं वो तो जानते हैं कि मरेंगे तो कृष्ण लोक में जाएंगे, कृष्ण की प्राप्ति करेंगे, तो डरने की क्या बात है, इसलिए बिना डरे मौत तो कुछ है ही नहीं, भक्तों के लिए मौत कुछ होता ही नहीं, है ना। मौत से उनका शरीर बदलता है लेकिन उनका कार्य बदलता नहीं, लेकिन तो इसलिए उन्होंने युद्ध भूमि का त्याग नहीं किया। यद्यपि सालवे के सेनापतियों द्वारा चलाए गए हथियारों की वर्षा से उन्हें पीड़ा हो रही थी। सालवानी के पशस्त्रो घय वृष्णवीरा वृषार्दिता न तत्त जूरणम स्वम स्वम लोके द्वय जिगी समहां। तात्पर्य लिखा है, श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं, यदु कुल के वीर युद्ध भूमि में प्राण गंवाने या विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प थे, उन्हें विश्वास था कि यदि वे लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी और यदि वे विजयी हुए तो संसार का भोग करेंगे। फिर साल्व का मंत्री था द्युमान, जो पहले प्रद्युम्न जी के द्वारा घायल हो चुका था, अब जोर से गरजता हुआ उनके पास आया और उसने उन पर काले लोहे की बनी अपनी गदा से प्रहार किया। साल्वा मात्यो द्युमान नाम प्रद्युम्नम प्राक पीड़िता आसाध्य गदिया मौर्या व्याहत्य विनदन बलि। अब क्या हुआ, प्रद्युम्न के सारथी दारुक के पुत्र थे, भगवान कृष्ण के सारथी थे दारुक और प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र हैं, तो सारथी भी दारुक का पुत्र है। दारुक के पुत्र ने सोचा कि उनके वीर स्वामी की छाती गदा से क्षत विक्षत हो चुकी है, था उसने अपने धार्मिक कर्तव्य को भले महत्व जानते हुए प्रद्युम्न को युद्ध भूमि से हटा लिया, तो कैसे रथ को भगा लिया, उसने अपना कर्तव्य समझ करके किया ये कार्य। प्रद्युम्नम गदयासीर्णम वक्षस्थलम मरिंदमम अपोवाहे ऋणात्सूतो धर्म विद्यारूकात्मज। तात्पर्य लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि प्रद्युम्न का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप था। हाँ, प्रद्युम्न भी विष्णु तत्व है जो कभी भी संसारी हथियारों से घायल नहीं हो सकता था, किंतु दारुक का पुत्र भगवान का महान भक्त था और प्रगाढ़ प्रेम के कारण अपने स्वामी को विपत्ति में जानकर उसने उन्हें युद्ध क्षेत्र से हटा लिया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं साल्व के सेनापति का नाम द्युमान था, वो अत्यंत बलवान था और यद्यपि वह प्रद्युम्न के 25 बाणों का मजा चख चुका था, किंतु उसने सहसा अपनी भयानक गदा से प्रद्युम्न पर आक्रमण कर दिया और इतनी तेजी से प्रहार किया कि प्रद्युम्न अचेत हो गए। तुरंत ही गर्जना हुई, अब वे मर गए। गदा का प्रहार प्रद्युम्न की छाती पर इतना गंभीर था कि उससे सामान्य व्यक्ति की छाती क्षत विक्षत हो गई होती। अब हुआ क्या कि प्रद्युम्न जी को होश आ गया। जब प्रद्युम्न जी को होश आया तो उन्होंने क्या देखा कि उनके रथ को जो है द्वारका नगरी में ले जाया जा रहा है, सारथी उनका उनके रथ को युद्ध भूमि से दूर ले जा रहा है। तो उन्होंने कहा अपने सारथी से, हे सारथी, ये निंदनीय है कि तुम मुझे युद्ध क्षेत्र से हटा लाए हो, ये बहुत मेरे लिए बड़ी निंदा की बात है, तुमने मेरे लिए बहुत ही निंदनीय कार्य किया, मुझे कलंकित कर दिया तुमने। लब्ध संयो मुहूर्तेन कार्ष्णे सारथिम अब्रवीत अहो साधुतम सूत यन्द्रनाम मे पैसर्पणम। इसी प्रकार से रावण का भी था। रावण जब मूर्छित हो गया तो रावण का सारथी राम से कि राम के साथ जो युद्ध चल रहा था उससे रावण की रक्षा करने के लिए रथ को लंका की तरफ ले जा रहा है। जब रावण को होश आया तो उसने तो बहुत बुरी तरह से डांटा, रावण ने असुर था, रावण ने तो बहुत बुरी तरह से डांटा और गाली दी कि तू क्यों ले जा रहा है, जबकि सारथी कि तो सद्भावना थी रावण की रक्षा के लिए कर रहा है, तो असुर हैं है ना, वो किसी के उपकार को नहीं समझता। प्रद्युम्न जी उपकार को समझ रहे हैं कि तुम तो मेरे भलाई के लिए ऐसा काम कर रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी निंदा की बात है। इसलिए जब प्रद्युम्न जी ने कहा तो डांटा नहीं तो प्रद्युम्न जी ने डांटा नहीं है, बल्कि कोमलता से कहा, क्योंकि कभी आपके द्वारा कोई मेरी सेवा हो रही है लेकिन उसमें मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन आप तो मेरी सेवा के भाव से कर रहे हैं तो फिर मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए जिससे कि आपको बुरा लगे, क्योंकि मुझे समझाना चाहिए कि आप कर तो मेरी सेवा कर रहे हो लेकिन मेरा तो नुकसान हो रहा है ना, तो तरीका होता है ना। तो प्रभुपाद जी भी जब देखते थे कि उनके शिष्य हैं वो कुछ उल्टा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो भावना है वो सेवा करने की है, तो प्रभुपाद ने भी उनको जो है प्रोत्साहन भी दिया और समझाया भी कि क्या करना है क्या नहीं करना है किस प्रकार से करना है, और ये भी कहा कि अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो मुझसे तुम्हें जानना चाहिए कि मुझे किस प्रकार का काम करना है। अगर मुझे पानी चाहिए तो मुझे पानी लाओ, गरम गरम दूध मत लाओ, है ना। तो इसी प्रकार से प्रद्युम्न जी सारथी को कह रहे हैं कि तुम मेरी सेवा तो करना चाहते हो लेकिन तुम मेरा इसमें नुकसान कर रहे हो, क्या मेरे लिए निंद नहीं है कि तुम मुझे युद्ध क्षेत्र से हटा लाए हो। लब्ध संज्ञो मुहूर्तेन कार्ष्णे सारथिम अब्रवीत अहो असाधुतम सूत यद्रणान्मे पैसर्पणम। कार्ष्णी प्रद्युम्न जी को कहा जाता है कार्ष्णी, क्यों, कृष्ण के पुत्र, इसलिए कार्ष्णी, जैसे दशरथ के पुत्र राम है तो क्या कहते हैं दासरथी, है ना, वसुदेव के पुत्र कृष्ण है तो क्या कहते हैं वासुदेव, है ना,
पांडव के पुत्र
पांडव के पुत्र है पांडव, कुंती के पुत्र कौंती, है ना, तो इसी प्रकार से कृष्ण के पुत्र कार्ष्णी। फिर क्या कहते हैं यदुवंशी जी क्या कहते हैं, मेरे अतिरिक्त यदुवंश में जन्मे किसी ने कभी युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया है। ये ऐसा वंश है, ये हमारा वंश ऐसा है, यदुवंश में कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं किया है किसी ने, क्या युद्ध भूमि छोड़े है? या तो युद्ध में मारे जाएंगे या युद्ध को जीतेंगे, हमारे वंश में ऐसा ही हुआ है। अब तो मेरी ख्याति एक सारथी के द्वारा कलंकित हो चुकी है। मैं एक नपुंसक की तरह जो लोग मुझे कहेंगे कि मैं मेरे अंदर क्या पुरुषार्थ रहा, तुमने मेरी कीर्ति नष्ट कर दी। संभावित कीर्ति मरणा नदी रहती थी, गीता भगवान कहते हैं जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके लिए अब कीर्ति मरण से ज्यादा बुरी है। मैं मर जाऊं वो ज्यादा अच्छा है, ऐसे जीवित होकर के अब कीर्ति भोगूं इसकी तुलना में। नयदू नाम कुले जाता श्रोयते रण विच्युता विना मत क्लीब चित्ते न सोते न प्राप्त किल्बिता। तो क्या कह रहे हैं कि सारथी के कारण मेरा जो है क्या हुआ, यश कलंकित हो गया। ये यदुवंश में इतने जो ना मतलब युगों से कई जो ना पीढ़ियों से जो यदुवंशी जो राजा हुए हैं चले आ रहे हैं, उनमें कोई नहीं हुआ ऐसा जिसने युद्ध छोड़ा हो, जिंदा रहते हुए युद्ध छोड़े। तो ये जो है मेरे लिए बहुत कलंक की बात है। आप क्या कहते हैं, मैं अपने पिता द्वय से क्या कहूंगा, पिता द्वय यानी राम और केशव दोनों ही मेरे पितर हैं, पितर में पिता और चाचा सब आ जाते हैं पितरों। तो राम और केशव से मैं क्या कहूंगा, जब युद्ध से मात्र भाग कर मैं उनके पास वापस जाऊंगा, मैं उनसे क्या कह सकता हूं जो मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो, मैं क्या उनको उत्तर दूंगा कि मेरे जो है अलायक हो, जितनी आशा की जाती है मुझसे ऐसी मैं क्या बात कहूं उनसे, किस प्रकार की बात कह करके मैं उनको संतुष्ट करूं कि जिससे उनकी आशा पर पानी ना फिरे, है ना। किम्न बक्षे भी संगम पितरो राम केशव युद्धात्म व्यंग अपेक्रांता पृष्ठस्तत्रात्मना क्षमम। आगे अब प्रद्युम्न जी क्या कहते हैं, निश्चय ही मेरी भाभियां मुझ पर हंसेंगी और कहेंगी, हे वीर हमें ये तो बताओ कि किस तरह संसार में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें युद्ध में ऐसा कायर बना दिया। ये मेरे लिए कितने दुख की बात है। देखो तीन प्रकार की चिंताएं प्रद्युम्न जी को, पहली चिंता हमारे कुल में कलंक लग गया, हमारे कुल में मैंने कलंक लगा दिया, युद्धवंश में मैं कलंक लगाया। और दूसरी चिंता क्या, कृष्ण और बलराम को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं इस तरह से भाग करके आया हूं। और तीसरी चिंता क्या है, भाभियां हंसेंगी, मेरी भाभियां हंसेंगी और कहेंगी, हे वीर हमें ये बताओ किस प्रकार तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें भगाया, कैसे तुम डर करके भागे सब बताओ, हाल युद्ध में कैसा कैसा तुमने देखा कि तुम डर करके भागे, तुम वो वर्णन करो हमको कथा, कि तुम बताओ कि मैं कैसे भागा डर करके, कैसे कैसे भयानक वहां पर कार्य हो रहे थे, मारा काटी हो रही थी, तो मैं भागा अपनी जान बचा करके भागा, है ना। भाभियां पूछेंगी इस प्रकार से, व्यक्तम में कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामय क्लेव्यम कथम कथम वीर तवान्ये कथताम वृधे। इसी प्रकार से जैमिनी महाभारत में भी आता है कि वृष केतु जो कर्ण का पुत्र था, उसकी पत्नी भी कहती है अपने पति से कि स्वामी तुम जा रहे हो किसके साथ, अर्जुन के साथ, तो युद्ध में तुम ऐसा युद्ध करना जिससे दूसरे वीरों की पत्नियां मेरे ऊपर हंसे नहीं कि तुम्हारे पति युद्ध छोड़कर भाग गए, और उस समय तो भगवान कृष्ण की भी पत्नियां थीं, तो वे भी ऐसा ही बोलेंगी। युद्ध छोड़ करके भाग गए, है ना। तो स्त्रियां आपस में मतलब एक दूसरे पर हंसती हैं कि तुम्हारे पति में ये कमजोरी, तुम्हारे पति में ये कमजोरी, ऐसी बताती हैं, है ना। तो बृहस्पति की जो पत्नी है वो कहती है कि मैं जो है ना ये नहीं सुनना चाहती कि जो ना कि वो मतलब जो दूसरी स्त्रियां हैं वो ऐसा बोलेंगी कि तुम्हारे पति जो छोड़ करके भाग गए, तो वो इस तरह से कहती है। यक्तम मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामयः क्लेव्यम कथम कथम वीरे तवान्ये कथ्यताम वृद्धे। अब सारथी ने क्या उत्तर दिया, सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु, मैंने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह जानते हुए ही ऐसा किया है। हाँ, सारथी का कर्तव्य है। हे प्रभु, सारथी को चाहिए कि जब उसका स्वामी संकट में हो तो उसकी रक्षा करे, और स्वामी को भी चाहिए कि वो अपने सारथी की रक्षा करे। मैंने अपना कर्तव्य किया है, ये मेरा कर्तव्य था उस समय। धर्मम विजानता युष्मन् कृतमे तन्मया विभो सूता कृत्र गतम रक्षेत रथिनम सारथिम रथी। इस नियम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको युद्ध स्थल से हटा लिया, क्योंकि आप अपने शत्रु की गदा से आहत होकर बेहोश हो गए थे और मैंने सोचा कि आप बुरी तरह से घायल हैं। एतन विदित्वा तु भवान् मयापो वाहि तोरणात् उपसृष्टा परिणेति मूर्छितो गदया हतः। तो सारथी ने जो बताया ये बात सही है। इसलिए अक्सर करते क्या है शत्रु लोग, क्या करते हैं कि अपने शत्रु के सारथी को पहले मारते हैं, सारथी को पहले मारते हैं। सारथी को जब मार के गिरा दिया तो फिर वो भाग नहीं सकता कहीं, है ना। तो इसलिए सारथी को पहले मारते हैं, घोड़ों को मारते हैं, घोड़ों को मारते हैं तो फिर घोड़े मर गए तो फिर आगे भाग नहीं सकता वो शत्रु, है ना। तो तरीका होता है, नहीं तो जो है ना शत्रु को जो है ना अगर संकट में देखता है तो सारथी रथ को ले जाएगा, भाग जाएगा, है ना। तो सारथी का ही कर्तव्य है, तो ये बिल्कुल सही है, सारथी का ही कर्तव्य है। यही उत्तर रावण के सारथी ने भी दिया था रावण को कि मैंने आपका जो है ना भला सोचा, इसलिए मैं लाया हूं, ये मेरा कर्तव्य था, लेकिन अब आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं, अब मैं ले चलता हूं आपको राम के सामने, अब आप युद्ध करो, है ना। तो इसी प्रकार से सारथी ने प्रद्युम्न जी से कहा। तो ये अध्याय यहां पर समाप्त हुआ। इस तरह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत साल्व और विष्णुओं के मध्य युद्ध शीर्षक 76वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की श्री गौणताय भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।